इसका असर कैसे पता चलेगा? चले आप अपने से एक सवाल कीजिए कि मुझे कैसे पता चले कि मैं मोमिन हूं? इसका पता चलेगा लजीन युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून से। ये दो डायरेक्ट क्राइटेरियन है, अंदर की हालत खुलती है नमाजों में और अल्लाह के रस्तों में खर्च करने पे। अगर तो नमाज में दिल लगा हुआ है तो बस समझ लीजिए कि खैर है इंशाल्लाह। मज़ा आता है नमाज पढ़ के? दो आलम से करती है बेगाना दिल को, जब चीज़ है लज्जत है आशनाई। अगर आप दिन में 5 बार अपने रब को सुनाते हैं तो यकीन करें आपको किसी को सुनाना नहीं पड़ता। कई बहनें अपने दुख सुख करती हैं तो मुझे किसी का बड़ा भोला सा जुमला लगा, तो बेचारी किसी परेशानी में थी तो कहने लगी कि मैं बस अपनी एक दोस्त से ये शेयर कर लूँ अपना गम। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अल्लाह को अपना दोस्त बना लें, आप अल्लाह से शेयर करें। मैंने कहा इंशाल्लाह आपका ये मामला देखिएगा चंद दिन में ठीक हो जाना है, सब ठीक होगा। तो लेकिन उस दोस्त को अगर आपने अपने घर की जाती बातें बता दी होंगी ना तो फिर आपको शर्म आएगी। कहती हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने कहा ना बताएं किसी को, सारे दुख सारे सुख सारी गीबतें सारे प्लान सारे मसले रब के सामने, ये है रब के साथ दोस्ती, इसमें करें। क्या आपका दिल नहीं दुखता? दुखता है ना, अल्लाह को सुनाए। हम जो दुखाता है उसको ही जाके सुनाते हैं, तुमने मुझे दुखी कर दिया। कल का सबक पढ़ाने के बाद तो यकीन करें मैं सारा दिन उसी के अंदर घूमती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे अपने आप को हमेशा सुरखरू पाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदों को कभी रब की जगह पे नहीं रखा। तो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप देखिए आपका एक छोटा सा बच्चा, जैसे मैं आपको एक वाक्य सुना देती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था तो माँ के साथ किसी जगह गया शॉपिंग की, तो माँ जब पैसे देने लगी तो जो दुकानदार था उसने वहाँ रखा हुआ एक कैंडी जार बच्चे को उसकी तरफ इशारा किया, कहा कि इसमें से कैंडी ले लो। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा मैं नहीं लूँगा, शर्माया। उसने एक दो बार फिर कहा तो माँ ने कहा बेटा अंकल कह रहे हैं तो ले लो। तो बच्चा पीछे से जैसे माँ के छुप रहा था ना, तो इतने में क्या हुआ कि वो जो अंकल थे ना उन्होंने खुद ही उस जार में ऐसे हाथ डाला तो ऐसे एक मुट्ठी भर के ना इतनी बड़ी तो उस बच्चे को दे दी कैंडीज की। तो बच्चे ने फटाफट ले ली। जब लेके बाहर आया तो माँ ने कहा कि बेटा जब अंकल कह रहे थे तो आपने क्यों नहीं लिया, और जब उन्होंने दी तो आपने सारी ले ली। कहता अम्मी अगर मैं लेता तो मैं तो एक लेता, तो अंकल ने तो मुट्ठी भर के दी। ये है ला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ। आज डिसाइड करें कि क्या आपने अपने काम खुद करने हैं कि अल्लाह से कराने हैं। मैंने तो ये बहुत साल से डिसाइड कर लिया, वह आप भी कर लें। अल्लाह तू जान तेरा काम, मैं नहीं करूँगी। आपको पता कि जब अबरहा ने हमला किया था ना खाना काबा पे, तो मक्का के ये बड़े बड़े सरदार जो थे ये अपने ढोर डंगर खानदान को लेके जो पहाड़ों पे चढ़ गए थे। अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी के दादा थे, तो जो दुश्मन बादशाह आया ना उसने इनकी कुछ बकरियां शकरियां कुछ जानवरों को पकड़ लिया, कब्जा कर लिया। तो अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे, ये उस दुश्मन बादशाह के पास गए। तो जब वहां गए उन्होंने इसको बिठाया बात की, तो उसने कहा जी सुनाइए अब्दुल मुत्तलिब कैसे आना हुआ? तो कहने लगे कि वो मेरी बकरियां किधर हैं वापस करो। तो कहने लगा वैसे मैं सच बताऊं मुझे आपकी इस बात को सुन के बड़ा दुख हुआ है, आप इतने बड़े सरदार आए तो मैं तो समझा कि आप काबे की बात करेंगे, कोई हमसे निगोसिएशन करेंगे कि खाना काबा को कुछ ना को, तो आप सरदार हो कि इतनी छोटी बात करते हैं, अपनी चंद बकरियों की ख्याल पूछ रहे हैं। कहने लगे देखो बकरियां मेरी हैं, मैं इसका पूछ रहा हूँ, घर रब का मैंने उसके हवाले किया। अल्लाह रब्बी में तवक्कल, अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले कर दें, अपने माल अपने असबाब अपने हम गम सब कुछ रब के हवाले दे, आप अंदर से मुस्कुराएंगे आप ग्लो करेंगे। लेकिन जब हम अंदर के अंदेशे खुदा हाफिज भी कहते हैं तो अंदेशा और अतर 10 दफा कहते हैं इधर ना जाना ये ना करना सड़क कूदना देखना करना, तो गोया कि हम अल्लाह के हवाले करके भी अपने हाथ में रखते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सोच आपके दिल में आएगी तो ताल्लुक बिल्ला बढ़ेगा। फिर आप देखिए कि मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून कैसे होता है, नमाज कायम हो जाएगी ना तो अल्लाह के रास्ते में देते हुए सबसे ज्यादा दिल खुलेगा। ये एक हमारा अपने लिए टेस्ट है कहाँ माल लगाते हुए, और माल याद रखिए सिर्फ पैसों में नहीं होता, वक्त स्किल्स घर सेहत जवानी क्या कुछ है जो लम से लेता है। लन तनाल और बिरा याद कर लीजिए। कहाँ लगाना आसान लगता है, कहाँ मुश्किल। एक छोटा सा क्राइटेरियन है, अपनी जात पे आप किसी को लगाता देखें और वो कंजूसी करे, 100 दफा सोचे फिर लगाए, और अल्लाह के रास्ते में यूं पकड़ के दे दो, तो समझिए कि मिम्मा रज़कनाहुम युन्फिकून है। और इसका ऑपोजिट सोचने की बात है, खुशी से खर्च करता है। और आप सब देख लीजिए, हम इंसानों की दुनिया में रहते हैं, हम किन पे खर्च करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। कभी किसी ने अपने बच्चों को ताना दिया, आज तक इतने का दूध पी गए हो, इतने का जूस खिला पिला दिया, इतना गोश्त खिला दिया तुम्हें, खुश होते हैं, बल्कि रोते ही है, खाते नहीं है, हालांकि वो खा रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है वो नहीं खा रहे। जिसे मोहब्बत होती है उसके बारे में यही लगता है। जिसको अल्लाह के दीन से मोहब्बत होगी ना, वो कभी नहीं सोचेगा, वो छोटी छोटी जमा तफरीकों में नहीं आता, मैंने ये किया मैंने वो नहीं किया, मैं आया तो मैं नहीं गया, तो मैंने ये किया, तो हिसाब किताब नहीं वो करता कि अब मैं दूं अब मैं ना दूं, दिल खोल के देता है, कहा ये कर लो। उलाइक हुमुल मोमिनून हक्का, यही लोग हैं जो हकीकी मोमिन है। अब यहां पे मोमिन की तारीफ की फर्स्ट डेफिनेशन पूरी हुई। आपको पता है इस सूरत ही की आयत, बस नंबर नोट कर ले अभी, 74। उस 74 में अब मोमिन की आखिरी और लास्ट तारीफ आप और मैं देखेंगे कि वहां फिर अल्लाह कहेंगे ओलाइक हुमुल मोमिनून हक्का। घर जाके तर्जमा पढ़ लीजिएगा, बस उसका पूरी सूरत आपके मेरे ईमान को यूं उथले पुथलेगी, जैसे आप चावल पकाने के बाद उसको चमचे से ऊपर नीचे नहीं करते, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, फिर ही खाने के काबिल होते हैं ना, ये पूरी सूरतें आपके मेरे ईमान को ऐसे उथलेंगी, फिर ही तो हम किसी काबिल होंगे। अल्लाह कहता है ईमान का ये कमली इजहार जाहरी है, आखिरी जो है वो तुम्हें मिलेगा। आयत 74 में मिलेगा क्या ईमान की बदौलत, लहुम दरजात इंद रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के पास ऊंचे दर्जे हैं। पहली बात, इनको अल्लाह ताला बहुत ऊंचे बर दर्जे देगा। जन्नत के 100 दर्जे हैं और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दर्जे मुख्तलिफ काम करने वालों को दिए हैं। और आपको पता है कि जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे किनको मिलने हैं, आप जैसे मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह को, कि जो आज कलम पकड़ के बैठे हुए हैं और कल जब जरूरत पड़ी सहाबा के तौर पे तो तलवारें भी उठा ली। याद रखिए, ये कुरान आपको मुझे सिर्फ इल्म नहीं दे रहा, ईमान भी दे रहा है। ये कलम पकड़ना बंदे को फिर अल्लाह के रास्ते में कलम पकड़ने के भी काबिल करता है। आज उम्मत में इतनी भीखापन क्यों है, रूह क्यों नहीं जिहाद में कि पहले कलम नहीं पकड़े हुए। तो हकीकत क्या है कि जब ये काम कर लेते हैं तो अल्लाह की मदद आती है, और अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को दर्जे मिलेंगे। मैं तो दर्जों को बस एक स्टेप में समझ के आगे चलना चाहूंगी, क्योंकि आगे बड़ा खूबसूरत वाक्य आ रहा है, और वो क्या है कि क्या इस दुनिया में हर चीज़ के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, क्वालिटीज़ क्या, दर्जों को आप क्वालिटी पे ले आइए। चलिए हम कपड़े पहनते हैं ना, क्या सच बताइए कि जितने कपड़े मार्केट में बिकते हैं क्या सब एक स्टैंडर्ड के हैं। मेरा ख्याल है कि 5 पाउंड की भी शर्ट मिल जाती होगी, और 4 की भी, शायद 2 की भी मिलती हो, आई डोंट नो, लेकिन मिल जाती होगी ना, और 100 पाउंड की भी शर्ट मिलती है, और हर चीज़ पर यह सुल चलता है। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जन्नत में तो बस पहुंच गए, चलो ना तो ना से नहीं, ब्रांड नेम मिले, हम वहाँ की इतवार बाजार से चीज़ें खरीद लेंगे, वहाँ की संडे मार्केट से चीज़ें ले लेंगे। अपने ऊपर लिखें ये, क्या मैं ये चाहूँगी कि जन्नत में मैं तो जाऊँ और मेरी बहन और मेरी खाला और पुप्पी और जो मेरी दोस्तें मुझसे आगे निकल गई वो तो ब्रांडेड चीज़ें लेके फिर रही हैं, और मैं वहाँ बस बीच के दर्जे में लेके बैठी हूँ। अल्लाह अजर तो ज़ाया नहीं करेगा मेरा भी और आपका। तो जिस दर्जे की ज़िंदगी उस दर्जे की आखरत, व मग़फ़िरतुन, दूसरी चीज़ क्या मिलेगी, मग़फ़िरत, किस चीज़ की, गुनाहों की माफ़ी। हम सब फिर भी गुनाह करते हैं, और पिछली ज़िंदगी के गुनाह भी अल्लाह मुआफ़ कर देता है जब बंदा अल्लाह के रास्ते में आता है। देखिए यहाँ एक छोटा सा असूल अल्लाह का समझ लीजिए, तमहीद है ये सारी अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की कोशिशों की। हर इंसान दुनिया में गलत काम करता है, लेकिन उसका इजहार फ़र्क होता है। मिसाल दे दूँ, एक मुलाजिम और एक काका की मिसाल ले लीजिए। पुराना मुलाजिम है, घर में भरोसे का, कई मौके पे वो घर वालों की बहुत मदद कर चुका है, ड्राइवर ले लें, कोई घर का पुराना हेल्पर है, पक्का बंदा है वो अपना। हो सकता है किसी वक्त उसकी किसी वजह से घर वालों को नुकसान हो जाए। ड्राइवर ले लेते हैं, 10 साल से आपके घर में था, उसने आपकी मुश्किल वक्तों में मदद की, रातों को गया एयरपोर्ट पे जाता है, सामान लेता देता है, घर आया कहता है बाजी गाड़ी लग गई है। आपको दुख तो होगा ना, लेकिन आप सच बताएं कि आपको उसके ऊपर गुस्सा या बदगुमानी आएगी? आप कहेंगे आज 10 साल में पहली दफा इससे गाड़ी लगी है। आप कहते अच्छा, वो रोने ही लग जाए, बाजी मेरी तनख्वाह से काट लो, ये करो वो करो, मेरी गलती नहीं। आप कहते कोई बात नहीं, जाओ। उसने इजहार कर दिया है कि वो आपका है। हो सकता है किसी और वक्त में कुछ और भी हो जाए, देर सवेर हो जाती है। इसमें तो आप 100 दफा कहेंगे इट्स ओके, कोई नहीं। लेकिन एक बिल्कुल नया बंदा जिसको अभी जुमा जुमा 8 दिन आपने हायर किया भारी पे और बड़ी तनख्वाहों के साथ, आते ही 1-2 हफ्ते के बाद वो गाड़ी मार देता है, क्या आप सोचेंगी? गबन कर दे, धोखा दे, गाड़ी की स्लिप और दे, बिल कम दे, फर्क किस बात का है? कि वो पहला जो बंदा है ना, वो प्रूव कर चुका है कि ही इज सिंसियर। लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं, दूसरे ने भी प्रूव नहीं किया। इसको ले लीजिए अपने और रब पे, एक दफा अल्लाह को प्रूव कर दे कि अल्लाह आई एम योर्स, इन्नी लिल्ला, इन्ना लिल्ला नहीं, इन्नी लिल्ला, अल्लाह आई एम योर्स, आप मेरे हैं मैं आपकी हूँ। जब मैंने अपने रब को या अपनी जिंदगी के चलने फिरने इन सलाती व नुसुकी व माहया या ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन पे साबित करा दिया ना, तो अल्लाह ताला मेरे बड़े बड़े गुनाह माफ़ करेंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह देखे इसने उस दिन देर से नमाज पढ़ी थी, अल्लाह देखे ये उस दिन सोई रह गई, इसकी आंख नहीं खुली। अल्लाह कहेंगे की थी, तुम पीछे हटो, मेरा मामला है, मग़फ़िरतुन और वरिज़्क़ुन करीम, अल्लाह आपकी साइड लेगा। इस वक्त मेरा और आपका इम्तिहान सिर्फ एक है कि अल्लाह को साबित कर दें कि आप मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर हैं, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी करके देखिए। के अंदर जितने लोग हैं ना, वो सारे उसके अंडर हैं, वो भी अल्लाह आपके हाथ में दे देगा। ये तो नहीं हो सकता कि आपको कोई कह दे कि ये ऊपर की चीज़ आप ले लें, लेकिन जो बीच की चीज़ है ना, ये मुझे निकाल दें, नहीं होगा ना। तो अल्लाह का बन जाइए, फिर देखिए दुनिया में मज़े। व रिस्कुन करीम, करामत वाला रिस्क, कौन सा रिस्क है करीम है? इसकी बहुत मुख्तलिफ तफसीरें होती हैं, बस आप ये कह लीजिए कि मोमिन के दोनों हाथों में लड्डू हैं, दुनिया भी उसकी आखिरत भी उसकी, अल्लाह ताला सब कुछ उसको दे देगा। लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग क्या जिंदगी है इनकी, ना घर के ना घाट के, लेकिन अल्लाह उनको इतना सुकून और इतना इत्मीनान दे देता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे, जब आप करेंगे तो ये सब मिल जाएगा। आपने मज़े की चीज़ देखी, कितनी सिफात आएंगी ना जरा मोमिनों की, 3 दिल से ताल्लुक रखती थी और 2, ठीक है। अब देखिए जरा अल्लाह क्या दे रहा है मोमिनों को, पक्के सच्चे मोमिन करार दिया, बुलंद दर्जे, बख्शिश, इज्जत की रोजी। अगर आप नोट करके देखें ना, तो जिस किस्म की अल्लाह के साथ बंदे की कुर्बानी होती है ना, अल्लाह सुभान तआला उसी किस्म की इनायत कर देते हैं। मुफसरीन ने इधर एक बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कहते हैं कि कल्बी इबादात के इवज़, यानी ये जो शुरू की 3 इबादतें हैं ना दिल की, जो है उसके इवज़ दर्जात में बुलंदी मिल जाएगी। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, और जो बदन के हमारे जिस्मानी काम है, जो नमाज और मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, इसके इवज़ मग़फ़रत होगी, और माली इबादत जो है उसके बदले में इज़्ज़त की रोज़ी होगी। समझ आए तो मान जाए, ना आए तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये याद रखे कि अल्लाह आपका मेरा कुछ एक छोटा सा भी अमल ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ज़ात बड़ी ज़रा नवाज है। अब आयत नंबर 5 से ग़ज़वे बदर का जिक्र शुरू होता है। थोड़ी सी आयतें पढ़ के मैं आपको फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूंगी। फरमाए कमा खरजा का रब्बुक मिन बैतिक बिलहक, जैसे कि आपको निकाला आपके रब ने हक के साथ आपके घर वालों से, जबकि वाइन नफरी कमिनल मोमिनी नलकारी होन, जबकि मोमिनों का एक गिरोह इसको नापसंद कर रहा था। ये कमा में का क्या है? जैसे कि जैसे मोमिन होते हैं, जैसे पीछे मोमिनों की बातें हो रही हैं ना, इसी तरह, यानी बिल हक से मुराद है गलबा दीन के लिए, मकसद के लिए, और आपके लिए ऐसे कि जैसे आप रोज़ सुबह घर से निकलते हैं कुरान सीखने के लिए, ऐसे इंशाल्लाह एक दिन आपकी ज़िंदगी में आएगा कि अल्लाह आपको दीन के निफाज के लिए भी निकाल लेगा। اخرجہ کا میں کاف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مم بیتی کا سے مراد آپ کے گھر یعنی آپ اپنی بیوی کے پاس تھے، بالحق سے مراد ہے کہ آپ اسلام کو غالب کرنے کے لیے نکلے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن کمزور تھا، ذرا بیمار قسم کا ایمان تھا، ان کو یہ نکلنا کیسا لگ رہا تھا، لَكَارِهُونَ، پسند نہیں کر رہے تھے، اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اب ہم گھر کو آرام کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلے، یہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا بیٹھتے ہیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ آیت 6 دیکھیے گا، یُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ کی بات اما تَبَيَّنَ، وہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ ان پر بات بالکل واضح ہو چکی تھی۔ اشارے ہیں غزوہ بدر کی طرف، غزوہ بدر کیا تھی؟ حق اور باطل کی جنگ تھی، کرائیٹیرین تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو ٹیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، اب اس کی تربیت کے بعد عملی ٹریننگ کا موقع تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ صحابہ کا ایک ٹیسٹ تھا، اورل ٹیسٹ تھا، کہ اتنے سالوں سے جو پڑھ لکھ رہے ہیں اور مشکلیں سہ رہے ہیں، بھلا عملی طور پہ یہ کام کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو مال گھر بار تو سب ہی چھوڑائے تھے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ لیں، صرف چند جملوں میں بتاؤں گی، ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی انشاءاللہ۔ سب مسلمانوں کے گھر بار مکہ میں رہ گئے، کیونکہ جان ہی بچا کے آ گئے تو بڑی بات تھی، اگلی باتوں کو کیا کرتے۔ اس سارے مال اسباب پہ مکہ والوں نے قبضہ کر لیا، جیسے عموماً ہوتا۔ جب یہ قبضہ مکمل ہوا تو اس سارے مال کو جمع کر کر ابو سفیان کی عمارت میں ایک قافلہ تیار ہوا کہ چلو اب ان پیسوں سے جا کر ملک شام سے سامان تجارت خریدتے اور اس سارے مال کو مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ اچھا، یہ خبریں پھیل رہی تھیں، ذوالعشیرہ ایک نام ہے، عشیرہ اور کچھ تھوڑا پروناؤنسیشن فرق بھی ہے، مکہ سے جب شام جاتے ہیں تو بیچ میں مدینہ ہے، بات واضح ہے۔ جب جا رہا تھا نا یہ قافلہ، اس وقت اللہ کے نبی کو یہ سی آئی ڈی ہو گئی کہ مسلمانوں ہی کا مال لے کر جا رہے ہیں اور قافلے کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور حفاظت پہ صرف 5 بندے ہیں، بہت گولڈن چانس تھا کہ اس قافلے کا راستہ روکا جائے اور اپنا مال ان سے واپس لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ آپ جائیں اور قافلے کو روکیں، لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کا کرنا، حالات اسباب کچھ اس قسم کے بنے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ قافلہ نکل گیا، صرف صحابہ کی اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی بنیاد پہ کہ اللہ کے نبی نے جتنی بات کہہ دی اتنی کافی ہے، لڑنا چاہتے تو اس وقت لڑ سکتے تھے لیکن نہیں لڑے، قافلہ چلا گیا، ملک شام چلا گیا۔ اب سوچ رہے ہیں نا، پیسے لے کے چلا گیا، اب کیا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، سامان سے بھرا ہوا، جو کیش تھا وہ سارا انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کی صورت میں سامان بھر لیا، اب دوبارہ کہاں سے گزرنا تھا؟ مدینہ سے گزرنا تھا۔ وہ لوگ جو پہلے بچ کے نکل گئے تھے، ان کے دل میں اندیشہ بھی تھا کہ ہم مسلمانوں کے ملک سے گزر رہے ہیں اور مال بھی مسلمانوں کا ہے، تو ہو نہ ہو یہ ہمارا راستہ روکیں گے۔ سیم یہی خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا کہ بھائی ہمارے مال کو لے کے نکل رہے ہیں تو چلو راستہ روکتے ہیں، بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، جیسے آپ کہتے ہیں نا، ایک تو بڑے فلائرز بنا کے پروگرامز ہوتے ہیں اور ایک سڈن ہوتے ہیں 2 دن کے بعد۔ کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی، بس ایک چھوٹی سی کال اللہ کے نبی نے صحابہ میں دے دی کہ جو نکل سکتا ہے نکلے اور ہم قافلے کا راستہ روکیں گے۔ کچھ نے تو اس کو ایک پریولیج لیا کہ او 13 سال بعد موقع مل رہا ہے آج میدان میں کودنے کا، وہ تو جوش میں پڑے۔ کچھ جو تھے جن کا ذکر ادھر آ گیا، ہائے کیوں، کیسے، مشکل ہے، دیکھ لیں، چلو چھوڑتے ہیں، انہوں نے سیریس نہیں لیا بس۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کو کہا جائے کہ آج شام کو ایسٹ لنڈن میں درس ہے، تو آپ میں سے جو ساتھ جانا چاہے چلے، تو کچھ جو موقع سمجھیں گے کہ ہے جا سکتے ہیں وہ تو چل پڑیں گے، کچھ کہیں گے نہیں فرض تو نہیں کیا ہم نہیں جاتے۔ یہ کیفیت تھی، یعنی اس میں ایمان نفاق کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ بعض دفعہ بعض پریولیجز ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں، کہ آج تک وہ صحابہ جنہوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا، ان کے حال پر دوسرے لوگ رش کرتے ہیں۔ آپ کو پتا کہ صحابہ کے درجے ہیں، سب سے اوپر آپ کو پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 4 صحابہ خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد 10 عشرہ مبشرہ، जिनको जन्नत की खुशखबरियां दी गई, और ये 313 जो इस जंग में गए, इनको नहीं पता कल क्या होना है, बस निकल पड़े। तो पता क्या चला कि कभी कुछ चांस ऐसा मिल जाता है कि बंदे के वारे न्यारे हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला ने झांक के इनको कह दिया था कि आज के बाद तुम कोई नेकी ना भी करो, मैंने तुम्हें जन्नत दे दी। इनको बदरी सहाबा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं कि कुछ ने उस मौके को ले लिया, कुछ ने उसको ना लिया, और कुछ वो आगे के इधर जाएं ना जाएं, क्या करें, दिस एंड दैट, और इसमें वो काफिला कूच कर गया। अब उसके बाद क्या होता है आगे देखिएगा। ये जो युजाद लू नकफिल हक की बात अबा तबैन लहुल हक है, तो इसके बारे में तारीख पढ़ेंगे अगर, तो सफरा स्वाद फा रा अलिफ और हमजा जगह का नाम है। इधर एक मीटिंग हुई थी। नबी सल्लम मदीना से कुरैश के काफ़िले का पीछा करने के इरादे से निकले थे, और ये उसी किस्म की एक मुहिम थी जो इससे पहले तकरीबन 8 मुख्तलिफ ट्रूप्स अल्लाह के नबी भेज चुके थे। तो उस वक़्त कुछ सहाबा ने कहा कि जाते हैं, कुछ ने कहा नहीं जाते हैं, थोड़ी सी बात हो गई। अल्लाह कहते हैं उनको मुश्किल क्यों लगा आगे जाना, कअन्नम युसाकून इलल मौत, वो लोग ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे कि वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं। वहुम यंजुरून, और वो उसको देख रहे हैं। अब देखिए कि ये कैफियत किसकी होगी, जिसके दिल में भी ईमान वो पक्का नहीं हुआ जो ऊपर गुजर गया। होता है, इंसानों में फ़र्क होता है, कुछ को काम करना बहुत आसान लगता है, कुछ को बहुत मुश्किल लगता है। तो यही कैफियत थी सहाबा की। अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, कुछ ने उसको वेल किया, कुछ ने उसको ना किया। कैसे हुआ आज 7 को देखिएगा। वाइज जयदकुमुल्लाहु इहदत तौइफतैनि अन्नहा लकुम, और याद करो जब कि अल्लाह वादा कर रहा था तुम लोगों से कि इन दोनों गिरोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, ये 1 से 2 गिरोह के हो गए। अब थोड़ी सी फिर तवज्जो कीजिएगा प्लीज़। काफिला अबू सुफियान के साथ आ रहा था, बहुत ज़्यादा साजो सामान था और काफिले की हिफाजत के लिए बहुत थोड़े लोग थे। अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको डर लगा कि जब मुसलमानों की टेरिटरी से गुजरेंगे तो हो सकता है कि हम पकड़े जाएं। उन्होंने फौरन मक्का मैसेज भेजा अबू जाहल को कि हमारी मदद के लिए कुछ लोगों को लेकर आओ। अबू जाहल जो मक्का में थे और बाकी भी लोग उनके साथ थे, जब उनको ये मैसेज मिला और माल उनका लिए एक बहुत बड़ा मोटिव था जिसको बचाना है, एक कसीर गिरोह तैयार हो गया। 1000 तकरीबन लोग थे, जदीद असलहे से तैयार, शान व शौकत के साथ गरजते बरसते, बड़े बड़े लीडर सरदार सब गए। कहते हैं कि मक्का से सब ने अपने लोगों को भेजा, जो खुद नहीं जा सका उसने अपने किसी गुलाम को ज़रूर भेजा। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, शादियों पे ज़रूर जाना पड़ता है, कोई किसी को भेज देता है अपनी जगह, यानी इस शौक में हर घर से लोग निकले। अब जब वो काफिला निकला तो उनके पास जदीद हथियार थे और सब कुछ था। अल्लाह सुब्हान तआला क्या चाहते थे कि मुसलमानों का मुकाबला हो अबू जाहल के इस गिरोह से, जिसके पास साजो सामान बहुत है, और ऑफकोर्स उनके पास कोई गोल्ड और सिल्वर और ऐसी चीज़ें नहीं थी। इंसान होने के नाते बशरी देखे ना, आप पर मैं भी होते, ऑफकोर्स हम होते तो फिर तो 100% ही ऐसे ही हो जाते। उनका क्या दिल था कि हमारा मुकाबला हो अबू सुफियान के लश्कर से, थोड़े से लोग हैं उनको पीछे करें और सारा माल हम ले लें। अल्लाह चाहते थे कि तुम इस लश्कर से लड़ो जिनके पास दुनियावी कुछ नहीं है लेकिन मामला बड़ा सख्त है। उसका तस्करा देखिएगा आयत 7। वाइस जयदकुमुल्लाहु इहदत तौइफतैन, जबकि अल्लाह तुमसे 2 गिरोहों में से एक गिरोह का वादा दे रहा था कि अन्ना हलकुम, ये तुमको मिल जाएगा, यानी तुम फतह पा जाओगे। व तवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौका, और तुम ये चाहते थे कि बगैर असलहे या कांटों वाले गिरोह से तकूनु लकुम, वो तुम्हारा हो। लिखिए ज़रा नीचे, आसानी के लिए लिखवा देती हूँ। तौइफतैन, 2 गिरोह से मुराद, नंबर 1 अबू सुफियान का काफिला मालो दौलत से भरा हुआ, और दूसरा अबू जाहल का काफिला असलहे से लदा हुआ। तवद्दून से मुराद कमजोर ईमान वाले सहाबा, या आम सहाबा भी कह लें। उनका ख्याल था क्या, अन्ना गैर ज़ाति शौका, शौका कहते कांटे को, थॉन, इसी से फिर हथियारों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, कि तुम चाहते थे कि उस काफिले से मुकाबला हो जिनके पास हथियार नहीं है, तकून लकुम, तुम्हारा हो जाए मुसलमानों का, यानी तुम अबू सुफियान के लश्कर से मिलना चाहते थे, अल्लाह ताला तुम्हें दूसरे से मिलाना चाहता था। खैर, तुम क्या चाहते थे कि माले गनीमत मिले, जबकि व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक बिकलिमातिही, अल्लाह चाहता था कि अपने फैसले के जरिए से हक का हक होना साबित कर दे। व यक्तदा बिरल काफिरीन, और काफिरों की जड़ काट दे। यहां जरा समझिएगा, सहाबा ये सोच रहे थे कि माल मिल गया तो कामयाब है, हम भी ये सोचते हैं, लेकिन अल्लाह चाहता था कि दुनिया तक एक मिसाल दिखा दे कि चंद मुट्ठी भर मुसलमान इतने बड़े काफले के ऊपर गालिब हो गए, यानी अल्लाह हक को साबित करना चाहता है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला दूरस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देना चाहते थे इस जंग के बाद, हकीकी फवायद, और मुसलमान शॉर्ट टर्म फायदा लेना चाहते थे माल की सूरत में। अल्लाह चाहते थे कि आज काफिरों के ये बड़े बड़े सरदार कुचले जाए, कुफर का सर टूट जाए और सब चीजें खत्म हो। इससे पता क्या चलता है कि जिंदगी में माल ही सब कुछ नहीं होता, फौरी और ज्यादा मिल सकता है, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए निकलने वालों को क्या गोल बनाना है कि इस्लाम के खिलाफ सोचे रखने वाले सर कुचले जाए। अल्लाह ताला ने बदरियों को हमेशा के लिए जन्नती करार दिया, इनका जिक्र खैर क़यामत तक रखा, काफिरों के दिलों में इनका रोब डाल दिया। तो मेरे और आपके लिए अमल क्या है कि हमेशा आसानियाँ नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ आया ना, तो इतना समझ लें कि आपको ये कह दिया जाए कि छुट्टियाँ 2 हफ्ते की हों, 4 की हों या 1 दिन की हों, हो सकता है आप सोचें 2 वीक की छुट्टियाँ हों। मिसाल है, आपने तो ज़ाहरी फ़ायदा सोचा कि 2 वीक बड़े अच्छे गुजरेंगे, और अल्लाह का फैसला नहीं एक छुट्टी हो ताकि आपका कोर्स वक्त पे पूरा हो जाए, तो कौन सा फायदे वाला है। ऐसे ही है ना, यहाँ ये मैसेज दिया गया है कि दूर रस फैसले किया करो अपनी जिंदगी के लिए। आप घर पे रह लें, कुछ ना करें, बहुत अच्छा फायदा है आपके लिए, आसान है, घर भी मजे में और आप भी मजे में सब। लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा क्या है कि युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक बिकलिमातिही व यक्तदा बिरल काफिरीन, और काफिरों की जड़ कट जाए। यहाँ दाबिर से कौन मुराद है? कुफर के वो बड़े 70 सरदार जो इस्लाम के खिलाफ प्लॉटिंग करते थे। सूरत अल-अनाम में भी हम पढ़ चुके हैं आयत 45 में, फकुतिया दाबिरुल कौम अल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिम कौम की जड़ काट दी और अल्लाह अपने काम करवा के रखता है। ग़ज़वे बदर को यौमुल फुरकान कहते हैं, हक और बातिल का फर्क हुआ था उस दिन। 313 खाली हाथ लोगों को अल्लाह ने 1,000 लोगों के मुकाबले में फतह दी। ये इस बात की दलील थी कि अल्लाह ईमान वालों और हक वालों का साथ देता है। इसलिए आयत 8 में फरमाया, लियुहिक्कल हक व युबदिलल बातिल वलव करिहल मुजरिमून, ताकि सच्चा कर दे हक को और झूठा साबित कर दे बातिल को, ख्वाह ये मुजरिमों को कितना ही नागवार गुजरे। तो जिंदगी में इसको गोल बनाइए कि अल्लाह हक को हक कर दे, बातिल ना करना। हम सब अपनी ज़िंदगी में इस कानून को बना लेंगे अपना रोल मॉडल, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबक इतना ही था, अगली जो आयत 9 से 19 है ना, ये झलकी हैं उस जंग में, स्टोरीज हैं बल्कि उसके पीछे, कि कैसे अल्लाह ताला ने ये सारी बातों को सामने रख के मदद की। हम सब अभी जितनी बात सुन चुके हैं, मैं आगे जाके इंशाल्लाह जहां भी मौका मिलेगा, मुझे लगेगा आपके आपके लिए टू मच नहीं, मैं पूरी गज़वा बदर के फैक्ट्स आपके साथ रखूंगी, लेकिन आज सिर्फ मैं आपको ऊपर से गुजार रही हूँ ताकि आप इसकी रूह को लें। अभी तक जितना सबक पढ़ा है इसका खुलासा क्या है? पहली बात आज के सबक से हमने ये सीखी है कि आपस का इख्तलाफ जो होता है ना, ये अल्लाह की मदद को दूर कर देता है। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, ईमान के मुनाफी है। दूसरी बात हमने सीखा कि अल्लाह का तकवा फराइज को पूरा करने के काबिल करता है बंदे को। तीसरी चीज आज हमने सीखी कि काफिर और ईमान वाले का फर्क यह है कि काफिर अपने हकूक पे नजर रखता है कि मेरा क्या हक था और क्या मिला ना मिला, जबकि मोमिन अपने फराइज पे नजर रखता है। आज देख लीजिए, हकूक का दावा है, विमेन राइट, ह्यूमन राइट, फलां राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हम लोग पूरी करते हैं। फिर अगली चीज इससे ये पता चलती है कि जब बंदा अल्लाह के दीन को सपोर्ट करने के लिए निकलता है तो दुनिया का माल उसको घर बैठे ही मिल जाता है। फिर अगली चीज आज हमने ये सीखी है कि जब लोगों की बेहतरीन तरबियत हो जाती है तो वो फिर बड़े बड़े काम करने में मुश्किल महसूस नहीं करते।